بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بابا فرید گنجشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں اور بہت کچھ پڑھا. ماشاءاللہ اب بھی گفتگو جاری ہے ان کے حوالے سے. سبحان اللہ, اولیاء کرام کا کیا فیض ہوتا ہے اور کیا طرز زندگی ہوئی. واقعہ سنتے جائیے, ایمان روشن ہو جاتا ہے اور وجود میں جھرنے بہنے لگتے ہیں. واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت بابا فرید گنجشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی. حضرت بابا فرید نے درویشوں کی رسم کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیریت پوچھی. ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی, اس لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں بات ہی نہیں کرتا تھا. آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت بیان کرنے لگی. کہنے لگی, میرا تعلق اجودھن میں بسنے والی گوالوں کے خاندان سے ہے. باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے. میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں. پہلے زندگی پرسکون تھی, مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں. یہ کہہ کر گوالن ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوفزدہ ہو. حضرت بابا فرید نے عورت کے ذہن کی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا, تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو. ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں. ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے. حضرت بابا کی شفقت اور محبت کو دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کپ کپا رہی تھی. کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں. وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے. کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا, مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے. میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ شراب یعنی بدعا دینے لگے. اگر تو ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے. میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کی کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی. پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں پہنچی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی. دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے اور میں نے اسے اتفاق سمجھتے ہوئے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ خود بخود کیڑے پڑ گئے ہوں. مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا. مجبور ہو کر میں نے دوبارہ ان جوگیوں کے پاس جا کر گزارش کی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ آدھا دودھ لے لو اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دو. مگر ان ظالموں پر میری گریہ وزاری کا کوئی اثر نہیں ہوا. پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے سخت لہجے میں کہنے لگے, گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے, پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے. تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے. آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا. میں کئی ماہ سے ان ظالموں کو دودھ دے رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں. آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض مجھے دیں گے. یہ کہہ کر وہ عورت رونے شروع کر دیا اور اس نے اپنے آنسوؤں کا ایک سمندر بہایا. حضرت بابا فرید نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا, صبر کرو, تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے والے ہیں. اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی, خیر میری تو جس طرح گزرے گی گزر جائے گی, مگر تم لوگ بہت شریف ہو. آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی. میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو. میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کریں اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا شکار نہ بن جاؤ. عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی. وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے اقدامات سے بچانے آئی تھی. حضرت بابا فرید اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے اور فرمانے لگے, تم ایک سادہ دل عورت ہو, ہم फकीर लोग हैं, मुझे हमेशा तुम्हारा यह खुलूस याद रहेगा। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर ना बन जाए, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगे और तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात कर रहे हो? दूध फरोश औरत ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। मैं तो उसी से मदद मांगती हूँ और हर रोज उसी को याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में तो कोई कमी नहीं आई। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद पत्थर का एक बेजान मुजस्मा है जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। वो किसी इंसान के क्या काम कर सकता है? मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं। वो इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम उस खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन दो चार शरपसंद जोगियों से नहीं दुनिया भर के सितमगरों से निजात देगा। अभी बाबा फरीद इस हिंदू औरत से गुफ्तगू कर रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नजर आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नजर पड़ी वो दहशतजदा होकर बाबा फरीद से कहने लगी, ये इन्हीं जादूगरों के चेले हैं, आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई तो ये मेरी तलाश में यहां पहुंचे। हजरत बाबा फरीद ने औरत को खौफजदा देखा तो फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं खुद इन लोगों को जवाब दे दूंगा। जादूगरों को चेलों ने आते ही गजब गजब का मुजाहरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तू यहां आराम से बैठी है और बातें कर रही है और गुरुजी दूध का इंतजार कर रहे हैं, आज तेरी खैर नहीं है। इसे मैंने रोक लिया था, हजरत बाबा फरीद ने जोगियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो। अभी फजा में एक मर्द खुदा के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि जोगियों पर सख्त तारी हो गया और वो इसी तरह जमीन पर बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ ने उन्हें जंजीर पहना दी हो। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हजरत बाबा फरीद ने उनसे भी वही फरमाया, बैठ जाओ। वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अलगरज गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा और वो सबके सब इस तरह हजरत बाबा फरीद के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे उन्हें किसी ताकतवर मकनातीस ने जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गुरु अपने चेलों को ढूंढता हुआ उधर आ निकला। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? गुरु ने गजबनाक लहजे में अपने शागिर्दों की तरफ देखा। उन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते, हजरत बाबा फरीद ने फरमाया। कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गुरूर तकबर के साथ बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा, बाबा फरीद ने फरमाया, कुफर के दिन पूरे हो चुके। गुरु पर हिजयानी कैफत तारी हो गई, वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा, बदी की तमाम ताकतों को पुकारता रहा, मगर आज कोई उसका मददगार नहीं था। आखिर गुरु ने हजरत बाबा फरीद के कदमों पर सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तजा की। तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तू उन्हें लेकर यहां से दूर चला जा, हजरत बाबा फरीद ने पुरजलाल लहजे में कहा। अगर आइंदा तूने मखलूक खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की जमीन तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हजरत बाबा फरीद से माफी मांगता रहा और फिर अपने चेलों को लेकर अजोदन की हदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह उसकी जगह पर इकामत गुजी हो गए, यानी जहां पर वो रहा करता था हिंदू जादूगर, उस जगह पर रहना शुरू हो गए और पूरा कस्बा आपकी इस करामत के शोर से गूंज उठा। नतीजे में सैकड़ों बुतपरस्त हल्के इस्लाम में दाखिल हो गए और अजोदन में यह आपकी पहली रूहानी फतह थी। अल्लाह अकबर। इस वाक़े की शोहरत हुई तो अजोदन के गर्दोपेश के जरूरतमंद हजरत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होने लगे। आप मोहताजों के लिए दुआ करते तो अल्लाह की तरफ से उनकी मोहताजगी दूर हो जाती, बीमार शफायाब हो जाते और परेशान हाल लोगों को जो परेशानियां थी उनसे निजात मिल जाती। एक दिन एक गरीब बूढ़ी आपकी खिदमत में हाजिर हुई और रो रो कर अर्ज करने लगी, मैं बेवा हूं, मेरी 3 जवान बेटियां हैं, आप दुआ फरमा दें कि उनकी शादी का बंदोबस्त हो जाए। बूढ़ी औरत के सवाल सुनकर हजरत बाबा फरीद ने अपने खादिम से फरमाया, आज जिस कदर नजरें आई हैं वो उन खातून को दे दो। नजर से मुराद जो औलिया कराम को नजराने मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, अशिया मिलती हैं नकद की सूरत में, क्योंकि ये तरीका होता है कि औलिया कराम को जब कोई नज़र पेश की जाती है तो असल में वो भी इबादत में ही शुमार होती है और औलिया किराम उसे रख लेते हैं एक तोहफा समझकर, लेकिन बाद में वो किसी न किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, क्योंकि वो शय जो इस तरह से लालच में रखी जाए वो हराम होती है औलिया किराम पर। तो औलिया किराम उसको रख लेते हैं और बाद में उसे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तकसीम कर देते हैं कहीं ना कहीं, या दीन के काम में लगा देते हैं। तो बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के पास भी इस तरह के बहुत से तहाइफ, और इनसे पहले हज़रत ख्वाजाबंदीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर औलिया किराम के पास भी हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक कहा जाता था कि आप रोज़ाना, आपको तोहफे में एक जोड़ा मिला करता था और आप वो पहना करते थे और जो पहना हुआ जोड़ा है वो उठाकर लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। इसी तरह आप नए जूते हर हफ्ते पहना करते थे, हर हफ्ते नए जूते, और पैसों की तो कोई हद ही नहीं, जितने पैसे आपको मिलते आप उसे खामोशी से मुसल्ले के नीचे रखते या उसको तकिए के नीचे रखते और उसके बाद उसे जहां चाहते लोगों को दे देते और ये कहते कि इसे मुझे क्या करना। तो इसी तरह से हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जो तोहफे आते तो वो आपके पास जमा हो जाते। तो बूढ़ी औरत का जब सवाल सुना तो बाबा फरीद ने अपने खादिम से फरमाया कि जिस कदर भी आज तोहफे आए हैं, नजरें आई हैं, सब इसको दे दो। खादिम ने सर झुका लिया, सैयदी आज तो कोई भी नजर लेकर हाजिर नहीं हुआ। हज़रत बाबा फरीद कुछ देर तक सोचते रहे। इसी दौरान बूढ़ी औरत गिरियाजारी करने लगी, मैंने तो आपके सखावत के बड़े चर्चे सुने थे, अब मैं कहाँ जाऊँगी, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, सहारा तो अल्लाह का होता है। हज़रत बाबा फरीद ने औरत को समझाते हुए फरमाया, इस फ़कीर को भी उसी का सहारा चाहिए। औरत अपनी ज़रूरतों की असीर थी, यानी ज़रूरतमंद थी, इसलिए बाबा फरीद की मजबूरियों को ना समझ सकी और एक ही जिद करती रही कि उसकी बेटियों की शादी का इंतज़ाम किया जाए। आखिर बाबा फरीद ने मजबूर होकर फरमाया, बीबी मट्टी का एक ढेला उठा लाओ। औरत ने हैरान होकर बाबा फरीद की तरफ देखा और बादल नाख्वास्ता खानका से बाहर निकलकर मट्टी का ढेला उठाया। बाबा फरीद ने बाबा से बुलंद तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और मट्टी के ढेले पर दम कर दिया। अहले मजलिस हैरान रह गए कि देखते ही देखते मट्टी का वो हकीर सा टुकड़ा सोने के डली में तब्दील हो गया। तुम्हारी बेटियों की शादियों के लिए काफी रहेगा? बाबा फरीद ने सोने का टुकड़ा औरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, हाँ ये बहुत है। औरत ने घबरा कर सोने का टुकड़ा ले लिया और ये कहती हुई खानकाह से चली गई, खुदा तुम्हारा भला करे, मेरी मुश्किल आसान हो गई। घर पहुंचकर औरत की नीयत बदल गई, सोना बनाने का नुस्खा उसके हाथ आ गया था। हरीस औरत ने गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने और खुशबू लगाई। ये लालच बड़ी बुरी चीज़ होती है, जब रूहानियत में कहीं लालच आ जाए या नस्बत में कहीं लालच आ जाए, या ये समझे इंसान के बस वो वली कामिल हो गया जो कुछ देखा कि हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला ने तीन बार कुलवल्ला शरीफ पढ़ी तो लाओ मैं भी पढ़ दूँ, तो लालच आ गई। उन्होंने जो पढ़ा वो एक तवील मसाफत के बाद, एक तवील रियाजत के बाद, एक तवील मंजिल से गुजरने के बाद उनके तीन बार कुलवल्ला शरीफ पढ़ने में असर हुआ। जैसे हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जीन घोड़े पर जब सवार होता हूँ तो मेरा एक पाँव एक जीन में होता है, मेरा दूसरा पाँव दूसरे तक नहीं जाता, मैं कुरान ख़त्म कर लेता हूँ। लोगों ने परेशान होकर अर्ज़ किया, सैयदी ये कैसे, कुरान कैसे ख़त्म कर लेते हैं आप, अभी घोड़े की पीठ पर बैठे भी नहीं पूरा कुरान ख़त्म। फरमाते हैं कि हाँ, मैं पूरी कुलवल्ला शरीफ पढ़ता हूँ, जब शुरू करता हूँ तो एक पैर डाल रहा होता हूँ, जब दूसरा पैर जाता है तो कुलवल्ला मुकम्मल हो जाती है, और एक कुलवल्ला अहद मैंने हुजूर से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो एक कुलवल्ला पढ़ ले उसको एक कुरान का सवाब मिल जाता है। चुनाचे इस औरत ने क्या किया, इसने गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर बड़े बड़े पत्थर सामने रखकर सूरह इखलास का विर्द करने लगी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरह इखलास सिर्फ तीन बार पढ़ी थी, मगर इस औरत ने अपने अमल में शिद्दत पैदा करने के लिए 300 बार पढ़ी, फिर पत्थरों पर दम कर दिया। औरत का ख्याल था कि सारे पत्थर आन के आन में सोने का ढेर बन जाएंगे, मगर बार बार दम करने के बावजूद भी पत्थरों में कोई तब्दीली ना आई। वह हरीस औरत तीन दिन तक मुसलसल यही अमल करती रही और पत्थरों पर फूंकती रही, फिर जब वह पत्थर सोने में तब्दील ना हो सके तो मजबूरन हज़रत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगी, आपने गौसल किया और ना खुशबू लगाई, बस तीन बार सूरह इखलास पढ़ी और मट्टी सोना बन गई, मैंने पूरे घर को खुशबुओं से महका दिया, कलाम इलाही का विर्द करते हुए अपनी ज़बान घिस डाली मगर पत्थर पत्थर ही रहा, आखिर क्यों? बूढ़ी जो औरत थी उस औरत की बात सुनकर हजरत बाबा फरीद मुस्कुरा दिए। अल्लाह ने तुम्हारी बेटियों की शादी को बंदोबस्त कर दिया था, उसका शुक्र अदा करो और अपने जहन को दूसरे मामलात में ना उलझाओ। नादान औरत पर बाबा फरीद की बात का जरा भी असर नहीं हुआ, बस वो एक ही जिद करती रही, आखिर मेरे अमल में क्या कमी रह गई कि पत्थर सोना ना बन सका? तेरे अमल में कोई कमी नहीं रह गई, बाबा फरीद ने पुरसोज लहजे में फरमाया। गुसल का अहतमाम भी था, खुशबू की कसरत भी थी, मेहनत और रियाजत भी थी, गर्ज तेरे पास सब कुछ था, तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी। महसूस कीजिए कि ये इंसान ही होता है जो बजायर सब कुछ नजर आता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो जबान कहां से लाए? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। अल्लाह अकबर, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से जो बात निकलती वो पूरी हो जाती, और वही असर अल्लाह ताला ने सरकार के नालैन के तुफैल औलिया किराम को अता फरमाया कि बाबा फरीद ने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की पहले, और कुरान इसलिए पढ़ा कि उसकी बरकत से वो मट्टी सोने की बन जाए। और ऐसा होता है कि बहुत सारे बीमारों को अल्लाह पाक शिफा देता है कुरान की बरकत से। अब अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार शिफा ना पा सके तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुरान में गलती है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इंसान के किसी अमल में कमी रह गई। आपने फरमाया कि तेरे पास सब कुछ था, बस तेरे मुंह में फरीद की जबान न थी। ये कहते कहते बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए, ये अल्लाह की बारगाह में शुक्र के आंसू थे कि ऐ रब्बे ज़ुलजलाल, तूने अपने बंदे की जबान में कीमिया की तासीर पैदा कर दी और मेरी इज्जत रख ली। हज़रत बाबा फरीद की शोहरत में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा था, अपने सीनों में तमन्नाएं लिए हुए, मुरादे लिए हुए, हजारों लोगों के हुजूम जौक दर जौक अजोदन की तरफ चले आ रहे थे, खींचे चले जा रहे थे। दिल्ली में एक आसूदा हाल शख्स था, यानी बहुत ही अमीर तरीन शख्स था, खुशहाल शख्स था, उसकी जिंदगी सिर्फ खेलकूद में गुजर रही थी। आखिर एक दिन उसे एक गैबी हिदायत मिली तो उसने भी अजोदन का रुख किया। बाबा साहब के रहने की जगह थी अजोदन, ताकि बाबा फरीद गिनशकर के दस्ते हक परस पर तौबा करे। रास्ते में इत्तफाक से एक खूबसूरत गाने वाली उसके साथ हो गई। कुछ दूर तक तो हालात पुरसकून रहे, मगर मुतरबा यानी गाने वाले की नीयत में खराबी थी। उसने नाजो अदा के मुजाहरे शुरू कर दिए और वो चाहती थी कि दिल्ली का यह मालदार शख्स उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। ये जो मुतरबा थी बड़े बेतकल्लुफाना कहकहे लगा रही थी, लेकिन अजोदन जाने वाला मर्द इस फाहिशा की तरफ जरा भी मुतवज्जो ना हुआ। आखिर सफर के दौरान एक ऐसा मकाम भी आ गया कि दोनों को एक ही बैलगाड़ी में सवार होना पड़ा। मुतरबा इतने करीब आ गई कि मर्द के लिए दामन बचाना मुश्किल हो गया, और गाने वाली बराबर छेड़छाड़ कर रही थी। आखिर मर्द भी उसकी तरफ रागिब हो गया। इससे पहले कि वो मुतरबा की शरारतों का जवाब देता, यानी गाने वाली की शरारतों का जवाब देता, अचानक एक दराज कामत शख्स सामने से आता हुआ दिखाई दिया। गाड़ी रोको, अजनबी शख्स ने हुक्म के लहजे में कहा। गाड़ी बान ने गाड़ी रोक दी। अजनबी शख्स करीब आया और मर्द के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए बोला, अफसोस है कि तूने इतने बड़े बुजुर्ग के पास तौबा की नीयत से जाने का इरादा किया और तेरी ये हरकतें हैं। ये कहकर वह अजनबी गायब हो गया। मर्द ने उस फाहिशा को गाड़ी से उतार दिया और तनहा अजोदन की तरफ रवाना हो गया। फिर जब वो हजरत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुआ तो सबसे पहले आपने यही फरमाया, उस रोज अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिफाजत की। ये सुनते ही उस शख्स ने हजरत बाबा फरीद के कदमों में सर रख दिया। ये सब शेख की तवज्जो का सदका है, वरना मैं गुनाह में दलदल में धंसता चला जाता। बाबा फरीद गिनशकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तूने नियत की और तूने मेरी जानिब रुजू किया तो उसी लम्हे अल्लाह ताला ने मेरे जरिए तुझे हिदायत दी और तेरे दिल पर मैंने तसर्रुफ किया, और बेशक अल्लाह ताला निगाहों में असर देता है कि औलिया इकराम अपने करम से लोगों को तौबा की जानिब रागिब करते हैं। हज़रत बाबा फरीद की मोहब्बतों का दरवाजा हर एक के लिए खुला रहता था। आपकी बख्शिश हुआ था के बड़े अजीब अंदाज थे। मुल्तान का एक जमींदार हजरत बाबा फरीद से गायबाना मोहब्बत रखता था। मौलाना आरिफ इसी शहर की एक मस्जिद में इमामत फरमाया करते थे। इत्तेफाक से उन्हें अजोदन का कोई काम था। जब वो सफर पर रवाना होने लगे तो जमींदार ने उन्हें 200 सफेद तनके चांदी के सिक्के देते हुए कहा कि जब आप अजोदन पहुंचे तो हजरत बाबा फरीद की खिदमत में यह हकीर सा नजराना पेश कर देना और अर्ज करना कि यह गुनाहगार दुआओं का तालिब है। जब मौलाना आरिफ अजोदन पहुंचे तो शैतानी फरेब में मुबतला हो गए। ख्याल आया कि जमींदार ने कोई तहरीरी बात तो कही नहीं है और ना ही कोई तहरीरी कोई माहदा हुआ, ना ही कोई तहरीर दी है। फिर बाबा फरीद को कैसे पता चलेगा कि नजराने की कितनी रकम आई थी। ये सोचकर मौलाना आरिफ ने ये जो 100 सिक्के थे अपने पास रख लिए और बाकी बाबा फरीद की खिदमत में पेश कर दिए। मौलाना ये क्या है, चांदी के सिक्के हैं, ये देखकर हजरत बाबा फरीद ने पूछा। मुल्तान में एक जमींदार आपका अकीदतमंद है, उसी ने ये रकम आपके लिए बतौर नजर पेश की है और दुआओं की दरख्वास्त की है। मौलाना आरिफ की बात सुनकर हजरत बाबा फरीद मुस्कुराने लगे। खुदा उस जमींदार का भी भला करे और आपका भी कि आपने हक बरादरी अदा कर दिया। मौलाना आरिफ हजरत बाबा फरीद के इशारे को समझने से कासिर रहे और रस्मी अंदाज में कहने लगे, मैं जाती काम से अजोदन आ रहा था, इसलिए मुझे आपकी खानकाह तक पहुंचने में कोई जहमत नहीं हुई। मौलाना जहमत तो हुई कि आपने नजराने की रकम को आधा कर दिया। हजरत बाबा फरीद बदस्तूर मुस्कुराते रहे और बोलते रहे, हक बरादरी इसी को कहते हैं। इस इनकशाफ पर मौलाना आरिफ शर्म से पसीना पसीना हो गए। बहुत देर तक सर झुकाए बैठे रहे, फिर अपने पैरहन के जेब से 100 सिक्के निकाले और बाबा फरीद के सामने रखते हुए अर्ज करने लगे, शेख, मौलवियों की हिम्मत अहले सुलूक की हिम्मत के बराबर नहीं हो सकती। है तो बाबा फरीद ने तमाम रकम लौटाते हुए फरमाया, मौलाना ये भी तुम्हारा है ताकि भाई को कोई नुकसान ना पहुंचे। मौलाना आरिफ ने यह कशफ सुलूक देखा तो अपना सारा सामान और नकदी खानका के दरवेशों में तकसीम कर दी और फिर हजरत बाबा फरीद के कदमों से लिपट कर रोने लगे। शेख, जब मोहब्बत की नजर की है तो इस दिल की कसाफतें भी धो डालिए। फिर अहले दुनिया ने देखा कि 100 सिक्कों की खैरत करने वाला रूहानी दौलत से मालामाल हो गया। मौलाना आरिफ का शुमार हजरत बाबा फरीद के खुलफा में होता है। आप पीर मुर्शिद के हुक्म पर सिस्तान तशरीफ ले गए थे। हजरत बाबा फरीद की दुआओं से लाखों इंसान फैजियाब हो चुके थे। किसी की खातिर दुआ के हाथ उठाए तो अल्लाह ताला के करम से उस पर सीम और जर की बारिश हो गई। किसी पत्थर पर अल्लाह का कलाम दम कर दिया तो सोना बन गया। मगर खुद बाबा फरीद की जिंदगी बड़ी उसरत में, बड़ी तंगी में गुजरी थी और यही हाल उनके दरवेशों का भी था जो आपकी निगरानी में सुलूक की मंजिलें तय कर रहे थे। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक लंगर खाने के लिए लकड़ियां जमा करके लाया करते थे। जंगल से दीला की जिम्मेदारी हजरत शेख जमालुद्दीन हासवी के सुपुर्द की गई। दीला एक किस्म का फल है जिस पर नमक और सिरका लगाकर अचार बनाया जाता है और उसे सालन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हजरत हुसामुद्दीन काहिली रहमतुल्लाह ताला अलैह पानी भरकर लाया करते थे और वही बर्तनों की सफाई भी किया करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया तरकारी पकाया करते थे। ये थी इस मर्द जलील के माशरती जिंदगी जिसके बारे में सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाया करते थे कि कुतुब इस शाहीन को जेर दाम लाए हो जिसका मकाम यानी जिसका आशियाना आसमान की इंतहाई बुलंदियों में है। हजरत बाबा फरीद कसीरुल औलाद थे। उनकी 3 बीवियां थीं। सैयद क़यामुल हक के इंतकाल के बाद उनकी बहू से हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निकाह कर लिया ताकि उसने खातून की कफालत हो सके। हमशीरा बीबी हाजरा उनके साहबजादे अली अहमद साबिर कलियरी भी हजरत बाबा फरीद के ही जेर कफालत थे। उन हजरात के अलावा खानदान के दीगर अफराद भी उस दरवेश के कुटिया में आ पड़े थे। वसाइल नापैद थे और मसाइल बेशुमार, फिर भी इतने बड़े खानदान का हंसी खुशी जिंदगी बसर करना एक करामत नहीं तो फिर और क्या थी। एक बार खातून बेगम हाजिर खिदमत हुई, उनकी आंखों से अश्क जारी थे। बीबी क्यों रोती हो, हजरत बाबा फरीद ने शरीक हया से पूछा। भूख की शिद्दत से मेरा बच्चा मरने के करीब है। खातून बेगम की आवाज़ घुट कर रह गई। हज़रत बाबा फरीद के चेहरे मुबारक पर एक लम्हे के लिए अक्स मलाल उभरा, फिर फरमाने लगे, यहाँ सब भूख से तड़प रहे हैं, मर्जी मौला यही है, इसे ले जाकर दफन कर दो। खातून बेगम संभल गई, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं तो सिर्फ इत्तला देने के लिए हाजिर हुई थी। मुझे खबर है, हज़रत बाबा फरीद ने अहले सब्र के लहजे में फरमाया, मैं बीमारी के मुतालिक जानता हूँ मगर इलाज मेरे पास नहीं। मसीहा के दरवाजे पर दामन फैलाओ, वो चाहेगा तो वो अपने बंदों को शिफा दे देगा। हज़रत बाबा फरीद आम बाप के मुकाबले में हजार दर्जा बेहतर बाप थे, मगर औलाद की मोहब्बत में आपने अपनी दरवेशाना रविश तर्क नहीं की थी। आप किसी से कर्ज लेकर यानी बच्चे की भूख मिटा सकते थे और अपनी रूहानी ताकत से पत्थर के टुकड़े को भी सोने में तब्दील कर सकते थे, मगर आपने कर्ज के लिए हाथ नहीं फैलाया और रूहानी ताकत का मुजाहरा भी नहीं किया। ये सब्र और शुक्र का आला मकाम है जिस पर हजरत बाबा फरीद अपनी रूहानी अजमतों के साथ जलवा अफरोज थे। बाद में ये गिरा वक्त भी गुजरा और गुजर गया, मगर आजमाइश में बाबा फरीद साबित कदम रहे और अजवाज औलाद को भी सब्र की तलकीन फरमाते रहे। औलाद के सिलसिले में हजरत बाबा फरीद पर इससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त था, और वह वक्त कब था, जब आपके 11-12 साल बेटे हजरत अब्दुल्ला को शहीद कर दिया गया। अजोदन का हाकिम हजरत बाबा फरीद से दुश्मनी रखता था और उसकी दुश्मनी का सबब एक ही था कि अजोदन के अवाम बाबा फरीद से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत बाबा फरीद अपनी इबादत में मसरूफ रहते और अवाम दरवाजे पर बैठे रहते, बादशाह वक्त को ये बात नागवार गुजरती। वो किसी ना किसी तरह बाबा फरीद को और जो आपसे मुतालिक होते उन्हें तकलीफ पहुंचाता रहता। फिर एक दिन चंद फसादियों ने बाबा फरीद के नौ उम्र साहबजादे हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया। कहने वाले कहते हैं कि हाकिम अजोदन के कहने पर यह कत्ल किया गया। इस वाक़े पर हजरत बाबा फरीद का दिल खून हो गया, मगर आपने दुनियादारों की तरह गिरिया उजारी नहीं की, बस खामोशी से चंद आंसू बहाए और बेटे को अपने हाथ से कब्र में उतार दिया। तदफीन के बाद अहलिया ने खानदान और मुरीदीन ने अर्ज किया, आप हाकिम अजोदन के हक में बद्दुआ कर दीजिए कि ये सब कुछ उसी की साजिशों का नतीजा है, मैंने तो उसे कोई दुख नहीं पहुंचाया। बाबा फरीद के लहजे में सोगवारी झलक रही थी। वो तो आपको मुसलसल अजीते दे रहा है, अहलिया ने खानदान ने शिकवा किया। एक इंसान दूसरे इंसान को वही कुछ तो दे सकता है जो उसके पास है। बाबा फरीद का सब्र तहमुल काबिल-ए-तीत था, मैं भी उसे वही कुछ दे रहा हूँ जो मेरे पास है। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत जुमले और क्या खूबसूरत अंदाज है जिंदगी का कि उसके पास क्या है, हाकिम अबक के पास सिवाय मुसलसल अजीत और तकलीफ देने के अलावा क्या है, इसलिए वो दे रहा है। और उसके जवाब में मैं सब्र और रजा का पैकर बना हुआ हूँ, जो मेरे पास सब्र है मैं वही दे रहा हूँ। मुतालिक ने बहुत कोशिश की कि बाबा फरीद हाकिम अजोदन के लिए बद्दुआ करें, मगर बाबा फरीद मुसलसल कहते रहे और हाकिम अजोदन आपको मुसलसल अजियतें देता रहा। वो चाहता था कि बाबा फरीद अजोदन छोड़कर कहीं और चले जाएं या दूसरे दुनियादार उलमा की तरह उसके दरबार में हाजिरी दिया करें। हज़रत बाबा फरीद घनशक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह मर्द हक परस्त थे, एक के आगे झुके तो सारी दुनिया की नफी कर दी। आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला की मौत का सदमा बर्दाश्त कर लिया, मगर हाकिम अजोदन की तरफ देखना तक गवारा ना किया। आखिर इस बदनिहाल हाकिम ने एक अजीब चाल चली, उसने एक सवालनामा तरतीब दिया और उसे लेकर मुल्तान के उलमाए कराम की खिदमत में हाजिर हुआ। और सवालनामा क्या था, एक बात याद रखिए कि हमेशा औलिया कराम को या तो हुक्मरानों से नुकसान पहुंचा है और या फिर जो बदअकीदा लोग हैं जो अकीदे से नफरत करते हैं उनसे नुकसान पहुंचा है, और इसी तरह के ये काम हमेशा से होते चले आए हैं। अब देखिए ये हाकिम वक्त ने सवालनामा तैयार किया। सवाल क्या था कि एक शख्स खुद को आलिम कहता है, हमेशा मस्जिद में रहता है, वहां गाना सुनता है और रक्स भी करता है। देखिए तीन बातें थी इसके अंदर, खुद को आलिम कहता है यानी उसको सारा शरीयत का इल्म है, मस्जिद में रहता है यानी अल्लाह के घर में है जहां सिवाय अल्लाह की इबादत के और कुछ नहीं होता, वहां वो गाना सुनता है यानी कवाली सुनता है, और जब वज्द आता है तो वो नाचता है यानी रक्स करता है यानी नाचता है यानी वज्द की कैफियत में। अगरचे बाबा फरीद गंजशेखर रहमतुल्लाह ताला अलैह नहायत आलिम और फाजिल इंसान थे, लेकिन आपने कभी खुद को आलिम नहीं कहा। समा सुनते थे मगर अपनी खानकाह में सुनते थे। आपने कभी आम अंदाज में रक्स नहीं किया, कभी कभी वज्द और हाल की कैफियत तारी हो जाती थी। इसी कैफियत को इस दरोग गो हाकिम ने, झूठे ने, रक्स का नाम दे दिया। ये सवालनामा तरतीब देकर हाकिम जूदन ने उलमाए मुल्तान से दरियाफ्त किया था कि ऐसे शख्स के बारे में इस्लाम का क्या फैसला है। उलमा ने सवालनामा पढ़ा और हाकिम जूदन से पूछा, ये कौन शख्स है जिससे इस किस्म की हरकत सरजद होती है? तुमने अपने सवालनामे में उसका नाम नहीं लिखा। वो अजूदन में रहने वाला एक शख्स फरीदुद्दीन मसूद है। हाकिम का लहजा गुस्ताखाना था। अदब से उनका नाम ले, एक आलिम ने हाकिम अजूदन को झड़क दिया। तू झूठ बोलता है। दूसरे आलिम गजबनाक हुए, इस तोहमत राजी पर खुदा से डर। ये कहकर उन उलमा ने हाकिम अजूदन का तरतीब दिया हुआ सवालनामा फाड़ दिया। दरअसल उसका मंसूबा यह था कि जब उलमाए मुल्तान बाबा फरीद के खिलाफ फतवा देंगे तो वो आसानी के साथ उन्हें इस इलाके से बेदखल कर देगा, मगर ये तदबीर कारगर ना हो सकी और वो नाकाम और नामुराद लौट आया। फिर इसने एक और नापाक मंसूबा बनाया। हाकिम अजूदन एक मलंग से मिला और उसे बड़ी रकम के लालच देकर बाबा फरीद के कत्ल पर आमादा कर दिया। हज़रत बाबा फरीद की आदत थी कि नमाज के बाद अपना सर खाक पर रख देते थे और कई घंटे तक उसी हालत में रहा करते थे। अगर सर्दी का मौसम होता तो एक चादर आपके सर पर डाल दी जाती थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक दिन पीर मुर्शद सजदे की हालत में थे और मेरे सिवा वहाँ कोई दूसरा खिदमतगार मौजूद नहीं था। अचानक मैंने देखा कि एक दराज कामत मलंग वहां दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर चमड़े का लिबास था और वो दोनों कानों में चांदी की बालियां पहने हुए था। मुझे उस शख्स की आमद सख्त नागवार गुजरी। मैं उसे रोकना चाहता था मगर इस ख्याल से कुछ नहीं बोला कि अगर मैं बात करूंगा तो हज़रत शेख की इबादत में खलल पड़ेगा। वो मलंग तेजी से आगे बढ़ा और पीर मुर्शद के करीब पहुंच कर रुक गया। फिर उसने बहुत जोर से आवाज दी। मलंग की चीख सुनकर हज़रत शेख के जज्ब की कैफियत जाती रही, लेकिन आपने सजदे से सर नहीं उठाया। क्या यहां कोई नहीं है? पीर मुर्शद ने इसी हालत में फरमाया। सैयदी, आपका गुलाम निजामुद्दीन हाजिर है। मैंने अर्ज किया, तुम इस पलंग को देख रहे हो जो मेरे नजदीक खड़ा है? हज़रत शेख ने फरमाया, जी हां, गुलाम इस पलंग को देख रहा है। मैंने अर्ज किया, मौलाना निजामुद्दीन, इसकी बगल में नंगी छुरी मौजूद है और वो मुझे कत्ल करने के इरादे से यहां आया है। पीर मुर्शद ने फरमाया। इस इंकशाफ ने मुझ पर लर्जा तारी कर दिया। मैंने घबरा कर मलंग की तरफ देखा, उसका चेहरा भी खौफ से बिल्कुल पीला हो गया और कपकपाने लगा। मौलाना निजामुद्दीन, इससे कह दो कि वो मुझे कत्ल नहीं कर सकता, यहां से फौरन भाग जाए, मैंने उसे माफ कर दिया। अभी हजरत बाबा फरीद के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि वो मलंग भाग खड़ा हुआ। फिर वो मलंग हाकिम अजूदन के पास पहुंचा और अपना खंजर उसके सामने रखते हुए बोला, मैं इस फकीर को कत्ल नहीं कर सकता, शायद सारी दुनिया के कातिल मिलकर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुछ दिन बाद वो हाकिम किसी मामले में माखूज होकर अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। ये खबर सुनकर हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, दिल आजारियों का अंजाम तो यही होता है, मगर अल्लाह ने मेरी जबान को आलूदा होने से बचा लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या औलिया किराम की शान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी ज़ात की अमली तस्वीर है ये औलिया। जैसे कि शायर ने फरमाया, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर दुआएं दी। तो क्या मतलब इसका, जख्म खाकर दुआएं दी यानी जिन्होंने पत्थर बरसाए लेकिन उन्होंने कभी बद्दुआ नहीं दी। तो यही दुआएं औलिया किराम की जबान से भी निकलती है, दुश्मन ख्वाह कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन औलिया किराम की जबान से कभी बद्दुआ नहीं निकलती, और अगर निकल जाए तो फिर उस बद्दुआ को कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए नहीं ला सकता कि वली की जबान बकौल मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के, तीर से भी ज्यादा तेजी के साथ उसके असरात आसमान पर जाते हैं और फिर कभी वो अल्फाज वापस नहीं होते, वो बदनसीबी लिख दी जाती है। लेकिन औलिया किराम को हिदायत यही है, तीन बातों की औलिया किराम को हिदायत की गई है। नंबर एक, असरार और रमूज जो तुम पर जाहिर हो उसे छुपाओ। नंबर दो, कभी अपनी जात को बर्तर ना समझो, और नंबर तीन, जमाना या मुआशरा कितनी ही तकलीफ क्यों ना दे, शिकवा ना करो अल्लाह से, क्योंकि इसी के लिए पैदा किए गए हो, और सब्र के साथ रहो, क्योंकि अल्लाह ने ताकत ये दी है कि काया ही पलट दे दुनिया की वो अपने एक इशारों में। ये हाल है उनके गुलामों का, सरदार का आलम क्या होगा। तो सरकार मदीना के गुलाम जब बगदाद में हो, सईदा गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला फरात में तुगयानी आई, और इतनी तुगयानी आई कि ऐसा लगता था कि पूरा बगदाद डूब जाएगा और कोई भी शख्स जिंदा नहीं रहेगा। सरकार आलम वज्द में आए और आपने अपना असा लिया और लेकर जोर से जमीन में गाड़ा और कहा कि रुक जा, इससे आगे न बढ़ना, क्योंकि तुझे अब्दुल कादर हुक्म देता है अल्लाह की जानिब से। और देखने वालों ने देखा इस करामत को कि सरकार गौसे आजम के हुक्म से वो जो तुगयानी थी, वो जो तूफान था, और वो जो पानी के ठाटे मारता हुआ जो एक सैलाब था, वो वहीं का वहीं रुक गया और असे को गिला नहीं कर सका। अल्लाह अकबर, ये औलिया किराम की शान है। लेकिन अगर औलाद शहीद भी हो जाए तब भी औलिया किराम की जबान पर शिकवा नहीं आता, क्योंकि जबान पर शिकवा रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको सब्र रज़ा की इन मनाजिल से गुजारे, और अपनी ज़ात में गुम होने की और अपने महबूब और औलिया की मोहब्बतों में गुम होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।